الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہم نے 280 تک پڑھ لیا تھا سورہ البقرہ کو آج ہم 281 سے 281 سے شروع کریں گے وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ڈرو اس دن سے جس دن تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر ہر جان کو اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو اس نے کمائی کی ہوگی اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ دو اہم باتیں ہیں۔ ایک یہ بات ہے کہ فرمایا کہ اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ کی طرف لوٹائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت برپا ہونی ہے اور قیامت برپا ہونے کے بعد سب کو میدان حشر میں اکٹھا کیا جائے گا اور سب سے باز پرس ہوگی۔ تو اس دن سے ڈرنا چاہیے کیونکہ اس دن عدل اور انصاف ہونا ہے، جو برائیاں ہم نے کی ہوں گی وہ بھی ہمارے سامنے آ جائیں گی اور جو نیکیاں کی ہوں گی وہ بھی سامنے آ جائیں گی۔ پھر فرمایا کہ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر جان کو جو اس نے کمائی کی ہوگی اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ سیاق و سباق میں رکھ کے دیکھیں تو دو لوگ اوپر زیر بحث آئے تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو قرض دینے میں ہچکچاتے ہیں اور سود پر قرض دیتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو قرض دے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ پھر سود دینے والوں کے اندر سے دو لوگ پیدا ہو گئے اس کلام کے بعد جب منع کر دیا گیا سود لینے کو۔ تو ایک وہ لوگ ہوں گے جو سود تو نہیں لیں گے، اب صرف وہ پیسے لیں گے جو انہوں نے ادا کیے ہوئے ہیں قرض کے طور پر۔ البتہ جو آخر پہ بات کہی کہ جو تنگ دست ہو تو اس کو موقع دیا جائے کہ اس کے ہاتھ کھل جائیں تو پھر اس سے واپس لیا جائے، اس میں اب دو صورتیں بتا دی تھی کہ ایک یہ کہ اس کو تم نے لینے ہی ہیں تو پھر اس کے کھلے ہاتھ کھلنے تک اس کا انتظار کرو، اور دوسرا کہ اگر تم ان کو معاف کر دو تو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب فرمایا کہ تم قیامت والے دن جاؤ گے تو جو تم نے کمائی کی ہوگی تو وہ پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جس نے سود چھوڑ دیا پھر اصل زر بھی چھوڑ دیا تو اس کو بھی کمائی ہوگی قیامت والے دن، اور جس نے سود بھی چھوڑ دیا لیکن وہ انتظار کرتا رہا کہ اس کا قرض دار اس کو پیسے واپس کرے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر پا لے گا ایک، کیونکہ اس نے اس کو مہلت دے دی، مہلت دینے کا اجر پا لے گا۔ اور جنہوں نے سود لیا ہی نہیں قرض دیتے رہے ان کو بھی ایک اجر ملے گا۔ تو جتنے پیچھے کردار ہیں ان سب کے پہلو سے جملہ بولا گیا ہے کہ جس جان نے جو کمائی کی ہوگی اس کا پورا پورا بدلہ دے جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ جنہوں نے ان لوگوں کا قرض معاف کر دیا جو دے نہیں سکتے تھے تو وہ محروم ہو گئے، نہیں، قیامت والا دن ان کو بے پناہ حصہ مل جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا بدلہ چکا دیں گے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ایک روپے کی کمی بھی نہیں کی جائے گی، ایک سکے کی کمی بھی نہیں کی جائے گی، پورے پورے پیسے، پوری پوری رقم، پوری پوری کمائی اس کو مل جائے گی۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو لوگ، یہ تو وہ لوگ تھے جو قرض دے رہے تھے، قرض دے کر واپس لینا، سود پر قرض دینا اور پھر سود چھوڑ دینا اور قرض واپس لے لینا، اور سود بھی نہ لینا اور قرض بھی معاف کر دینا، یہ دائرہ کے درجات کی بلندی کے اعتبار سے آدمی یہاں پہنچ جائے گا۔ تو ان کو فرمایا کہ تسلی رکھو قیامت والے دن تم سب کو اجر ملے گا، اور وہ کیس بھی زیر بحث ہے کہ جو سود لے لے کے فوت ہو گیا، وہ بھی اپنی کمائی قیامت والے دن پا لے گا، یعنی اس کو پھر سزا بھگتنی پڑے گی، جو اس نے غریب لوگوں کا مال بٹورا ہوگا سود کے ذریعے سے وہ بھی پکڑا جائے گا۔ یہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جو اوپر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے اس کی شدت کو، کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند تھا کہ اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ قرار دیا ہے. اب چونکہ بات قرض پہ چلی گئی، بات شروع ہوئی تھی ربا سے، سود سے، اور سود چونکہ ہوتا ہی قرض میں ہے، تو اس لیے بات اب قرض کی طرف چلی گئی، تو قرض کے کچھ آداب اللہ تعالیٰ نے بتا دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرض دینے والے کو پسند کر رہے ہیں، قرض دینے والے کو پسند کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سوسائٹی کے غریب لوگوں کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے تحفظ کے لیے بھی، اور جو قرض لے رہا ہے اس کے تحفظ کے لیے بھی کچھ قانون سازی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه، اے ایمان والو، جب بھی تم قرض آپس میں دو ایک مقرر مدت کے لیے تو اس کو لکھ لو. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے کہ دکاندار آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یار یہ 10 روپے پکڑانا، اب یہ لکھنے کی ضرورت ہے، ابھی واپس کر دیتا ہوں. تو یہ الی اجل مسمى نہیں ہوتا، فوری فوری معاملات چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس میں بھی نقصان ہونے کا ڈر ہوتا ہے، بلا شبہ بھول جائیں گے، لیکن بہرحال اس کا لکھنا ضروری نہیں ہے، لکھ لیا جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے. کیا ایمان والو، جب تم قرض کا لین دین کرو ایک مقررہ مدت تک کے لیے، تو ایسے قرض کو لکھ لیا کرو کہ میں نے فلاں صاحب کو اتنے پیسے دیے ہیں، اور فلاں صاحب جو ہے وہ. تو پہلا حکم یہ ہو گیا کہ قرض دینے والے کو اللہ تعالیٰ تحفظ دے رہے ہیں، قرض لینے والے کو بھی، دونوں کو تحفظ ہے، اس لیے قانون کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے. اے ایمان والو، جب بھی تم آپس میں قرض کا لین دین کرو ایک مقررہ مدت تک کے لیے، قرض جو دیا جاتا ہے اس کا لین دین کرو، تو اس کو لکھ لیا کرو. ول یکتب بینکم کاتبن بالعدل، اور چاہیے کہ جو بھی تمہارے درمیان میں لکھنے والا ہے وہ لکھے عدل کے ساتھ. یعنی پرانے زمانے میں لوگ پڑھنے والے تو ہوتے تھے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے پڑھ نہیں سکتے تھے، تو اب کاتب نے لکھ دیا جو وہ دلیل بن جائے گا. اس نے لیے ہیں 10 روپے، وہ پہاں لکھ دیے ہیں 20 روپے، تو اس کو ظلم ہو جائے گا اس کے ساتھ. تو اس لیے فرمایا کہ دوسرا حکم یہ دیا کہ جو لکھنے والا ہے وہ عدل کے ساتھ لکھے گا، یہ دوسرا حکم ہے. پہلا حکم کیا ہے، جب بھی کسی مقرر ٹائم تک کے لیے قرض لو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ جو لکھنے والا ہے وہ عدل کے ساتھ لکھے. ولا یا با کاتبن، تیسرا حکم یہ دیا کہ انکار نہیں کر سکتا لکھنے والا، این یکتبہ کما علمہ اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے، تو لکھنے والے کو انکار بھی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس کو لکھنا آتا ہے، بہت سارے لوگوں کو لکھنا نہیں آتا، تو اس احسان کا مطلب، لکھنے کے دونوں مطلب ہیں، ایک یہ کہ لکھنے کا جو سکل ہوتی ہے وہ، دوسرا یہ کہ قرض کی دستاویز لکھنی کیسے، قانونی چارہ جی اس میں کیا ہے، اس میں کیا کیا پہلو سامنے رکھنے ہیں، جملہ کیسے لکھنا ہے. بس میں نے سب سے پہلے جو جملہ قرض کا پڑھا تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ میں نے اتنے پیسے دیے ہیں، نصف جن کا یہ ہوتا ہے، اور روپوں میں یہ ہوتا ہے، رقم میں یہ، ساری چیزیں لکھی گئی تھی، یعنی رقم بھی لکھی گئی ڈیجٹس کے اندر، اور پھر الفاظ بھی لکھے گئے، اور پھر ان کا نصف بھی لکھا گیا تاکہ کوئی چکر نہ چلایا جا سکے. تین رنگ سے انہوں نے ایک ہی بات کو لکھا تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو. تو اب لکھنے کا فن صرف یہ نہیں ہے کہ لکھنا جانتا ہے، بلکہ اس کی باریکیوں کو بھی جانتا ہے کہ قرض کی دستاویز کیسے لکھی جاتی ہے. تو فرمایا کہ کوئی لکھنے والا انکار نہ کرے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے، خدا نے اس کے اوپر جو احسان کر رکھا ہے، اس کو ایک مہارت دے رکھی ہے، تو اس مہارت کی وجہ سے وہ لکھنے سے انکار نہ کرے. بظاہر قرآن سے یہ لگ رہا ہے کہ لکھنے والا مفت لکھ کر دے گا، لیکن آج کل یہ بھی ایک پیشہ بن گیا ہے، لیکن وہ کوئی ناجائز نہیں ہے، کیونکہ وہ بیٹھے ہیں آپ کے لیے ٹائم نکال کر، تو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال یہاں چونکہ سوسائٹی میں جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک اللہ تعالیٰ اپیل سی کر رہے ہیں، تو اس لیے یہاں پر یہی اسلوب ہے. تو پہلا حکم یہ ہوا کہ جب بھی کوئی ٹائم کے لیے، مہینے کے لیے، 10 دن کے لیے، 15 دن کے لیے قرض لیا جائے تو اس کو لکھ لیا جائے. دوسرا یہ کہ کاتب جو لکھے تو وہ پورے پورے انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، کوئی چیز کمی بیش نہ کرے، نہ قرض بڑھائے، نہ قرض کم کرے، نہ مدت کو غلط طریقے سے لکھے. اور تیسرا، چوتھا حکم یہ کہ لکھنے سے انکار نہیں کرے. پانچواں حکم یہ کہ فل یکتب ول یمل الذی علیہ الحق. تو پانچواں حکم یہ کہ جو दिखाने वाला है वो होगा जिसने कर्ज लिया है, जिसने कर्ज लिया है वो लिखाएगा, कर्ज देने वाला नहीं लिखाएगा। ये भी अदब बता दिया अल्लाह ताला ने कि जिसके ऊपर हक है, क्योंकि वो लिखाने का अमल करेगा जिसने कर्ज लिया है। और फरमाया कि वल यत्तकिल्ला, और अल्लाह से डरता रहे, रब्बहू वला यबखस मिन्हु शैया, और जो कर्ज़ लिया है उसमें से कोई चीज़ कम ना करे। जो लिखाने की ज़िम्मेदारी है, जो कातब ढूंढने की ज़िम्मेदारी है, लिखवाने की ज़िम्मेदारी है, वो उसके ऊपर है जिसने कर्ज़ लेना है। और कर्ज जो कातब लिखने वाला है वो बदयानती ना करे, जो लिखने वाला है वो भी कमी ना करे। यानी उसने 10 रुपये कर्ज़ लिया है तो 10 रुपये ही लिखे, 11 लिया है तो 11 रुपये ही लिखे, उसमें कोई कमी ना करे। और अल्लाह से डरता रहे जो उसका रब है। तो ये अब कानून जो दस्तावेज़ लिखने का है उसमें बात आगे चलेगी। तो ये अहकाम देते जा रहे हैं अल्लाह ताला, फ़ैन कान अल्लाज़ी अलैहि लक सफ़ीहन औ ज़ईफ़न वला यस्तती अन युमिल्ला हुवा फलयुमलिल वलीयहु बिलअदल। और जो जिस पर ज़िम्मेदारी है यानी कर्ज जिसने लिया है, वो अगर बेवकूफ़ हो या कमज़ोर हो या इस काबिल ना हो कि वो इमला करवा सके बोलकर, तो चाहिए कि उसका वली अदल के साथ उसके लिए इमला करवा दे। तो जो लिखवाना है वो लिखवाने का अमल उसका वली कर दे। ठीक। तो अब दो चीज़ें बयान की अल्लाह ताला ने, बेवकूफ़ हो यानी एक बेवकूफ़ आदमी का घर बनाना है उसके लिए कर्ज़ ले रहे हैं, चचा उसका कर्ज़ ले रहा है वली उसका कि इसका घर बना देना है। अब वो ज़ाहिर है कि लिखवा नहीं सकता, लेकिन उसके मशवरे से लोगों के कहने पर ये मामला किया जा रहा है, तो ऐसी सूरत में लिखाने का अमल उसका वली करेगा। ऐसे ही वो ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, वो भी ऐसा नहीं कर सकता, या लिखाने ही की सलाहियत नहीं। बस लोग इतने होते तो समझदार हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि लिखवाना क्या है, कैसे लिखवाना है, तो वो इस काबिल नहीं है कि लिखवा सके, तो फिर वली लिखवाएगा। इन तीन सूरतों में, एक ये कि वो बेवकूफ़ हो, सादा सा बच्चा हो, लड़का हो या आदमी हो, या ज़ईफ़ हो, या लिखाने का समझ ना आ रही हो कि कैसे लिखवाए, तो फिर उसका वली लिखवा दे, लेकिन वो भी अदल के साथ लिखवाए। तो अब ये सब कुछ जो कुछ था अभी तक हमने बात की, ये लिखवाने के पहलू से हुक्म थे कि जब भी कर्ज़ इस तरह से लिया जाए तो लिख लो, खा सगे भाई से लें, खा दोस्त से लें, लंगोटिए यार से लें, लिखवाना चाहिए। मैंने इसमें बड़ी ख़राबियाँ होती देखी हैं। अभी पिछले साल की बात है कि एक भाई बरतानिया रहता था और एक पाकिस्तान में था, उसने उससे कोई कर्ज़ लिया, अपने पाकिस्तानी भाई ने अपने बरतानवी भाई से कर् ज़ लिया, 4,000 बरतानवी पाउंड का। तो अब उसने पिछले साल वापस करने का प्रोग्राम बना उसका, तो बरतानवी भाई ने कहा कि मैंने तुम्हें 4,000 पाउंड दिए थे, 4,000 पाउंड ही वापस करो। हालांकि उसने जो भी लिया था उस वक्त ये नहीं लिखा गया था, उसको तो पाकिस्तानी रुपए चाहिए थे अपना घर बनाने के लिए जो कुछ भी था। अब उसने पाउंड्स भेजे थे, इसने पाकिस्तानी करेंसी में चेंज करा के अपना काम किया, लेकिन अब वो मांग रहा है, और उस वक्त कोई पाउंड होगा मेरा ख्याल है, जो ये बढ़ने से पहले की बात है, कर्ज़ उस वक्त लिए जब तेज़ी से ये डॉलर बढ़ा है और पाकिस्तानी रुपया गिरा है, तो अब वो लाखों करोड़ों का फ़र्क पड़ जाता है। तो जब आपने लिखा था उसी वक्त लिख लेना चाहिए कि क्या लिखा गया है, किस बुनियादों पर वापस होगा, किस करेंसी में वापस होगा, जब करेंसी भी दूसरी हो रही हो, तो ये लाजमन लिख लेना चाहिए। तो आजकल के लिखने में ये सारी बातें लिख लेनी चाहिए कि कितनी रकम ली है, पाकिस्तानी रुपए में वापस होनी है या किसी और करेंसी में वापस होनी है, ये सारी बातें लिख लेनी चाहिए। तो दो भाई, अच्छे मोहब्बत वाले दो भाई लड़के बैठ रहे, सुलह नहीं हो पा रही, तो ये नहीं होना चाहिए। तो कर्ज़ जब लिया है तो कर्ज़ एक अहम चीज़ है, किसी का माल है, कोई उसको इस्तेमाल करने के लिए ले रहा है, तो उसका ये बड़ी अनायत होती है कि उसने आपकी हमदर्दी में, मोहब्बत में तावन कर दिया, लेकिन अब उसको भी नुकसान नहीं होना चाहिए और आपके ऊपर भी जुल्म नहीं होना चाहिए। तो ये लिखने के पहलू से, अदल के साथ लिखने का मतलब अब हमारे ज़माने में आकर, चूँकि अब करेंसी का तबादला बहुत तेज़ी से होता है, बहुत सारे बहन भाई आपस में इस तरह से कर्ज लेन देन कर सकते हैं कि एक बाहर रह रहा है, एक पाकिस्तान में रह रहा है, तो उस सूरत में कर्ज को कैसे लिखना है, वो सारे अदल के साथ मामला होना चाहिए। उसके बाद आगे फरमाया कि वस्तशहदु शहीदैन मिन रिजालिकुम फ़ैन लम यकूना रजुलैन फर रजुलुन व मरातान, और इस कर्ज़ की दस्तावेज़ के ऊपर दो गवाह भी बना लो। लिखने की बात हो रही थी, अब दूसरा हुक्म आ गया गवाहों का। लिखने में जो बातें थी वो मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। कर्ज़ जब भी लिया जाएगा लिखा जाएगा, लिखने वाला अदल के साथ लिखेगा, और कोई लिखने वाला इनकार ना करे। ये बंदों के साथ तआवुन है तो चाहिए कि हर आदमी लिख दे, और लिखवाने का हक उसका है जिसने कर्ज़ लिया है, और वो भी अदल के साथ लिखे, कोई चीज़ कम ना करे। और अगर कोई लिखवाने के काबिल नहीं है इन लोगों में से, तो फिर उनका वली लिखाने का काम करेगा, लेकिन वो भी अदल के साथ करेगा। ना इसको फ़ायदा पहुंचाए अपने जिसके लिए वो लिख रहा है, और ना उसको नुकसान पहुंचाए जिसको जिससे कर्ज़ लिया गया है। अब लिखने के ये आदाब थे। उसके बाद फरमाया कि दो गवाह भी अपने अंदर से ले लो। यह आयत बहुत मशहूर है, इसी से गवाही का मसला हमारे यहाँ पैदा होता है। तो अगर तुम दो गवाह बना लो मिन रिजालिकुम अपने लोगों में से, यहाँ हमें अपनी मर्ज़ी से दो गवाह बनाने हैं मर्दों में से। फ़ाइन लम यकूना रजुलैन, तो अगर दो आदमी ना मिले, फर रजुलुन व मरातान मिम्मन तरज़ौना मिन शहदा, तो फिर अपनी मर्ज़ी से जो तुम्हें राज़ी जो अच्छे लगे गवाह, वो दो औरतें और एक मर्द गवाह बना लो। अंतज़िल्ला एहदाहुमा, के एक खातून अगर डगमगाए, फ़तुज़क्किरु एहदाहुमल उख़रा, तो दूसरी उसको याद दिला दे। ठीक हो गया। तो अब इसमें दो गवाह बनाने हैं दस्तावेज़ के ऊपर। दो गवाह बनाने में जो आयत है वो दो सूरतें पेश कर रही है। एक ये कि दो आदमी मिल जाएं तो ठीक, दो आदमी ना मिलें तो एक आदमी और दो औरतें गवाह बनाई जाएंगी जिन पे तुम राज़ी हो जाओ। दोनों पार्टीज़ का राज़ी होना ज़रूरी होता है। और औरतों में से दो बनाने की वजह ये बताई कि अगर एक भूल जाए, गड़बड़ा जाए, तो दूसरी याद दिला दे। यानी गवाही एक ही की चलेगी, गवाही एक ही की है, दूसरी सिर्फ याद दिलाने के लिए साथ है। ये एक सादा सी ज़िंदगी की हदायत है कि ख़वातीन जो हैं वो इन चीज़ों में जो शामिल नहीं होती कारोबारी मामलात में, तो उनको अगर आप शामिल करें तो फिर ये अहतमाम कर लेना चाहिए कि दो ख़वातीन को गवाह बना लें ताकि एक याद दिला दें। गवाही एक ही की है, दूसरी को याद दिलाने के लिए साथ रखा गया है ताकि वो उसके लिए याद दहानी का ज़रिया बन जाए। ऐसा नहीं है कि ये कहा गया कि दोनों गवाही देंगी, ये नहीं कहा गया, बल्कि ये कहा गया है कि एक भूल जाए तो दूसरी याद दिला दे। अब ये जो दो गवाहियों का मसला है वो बिल्कुल हल हो जाता है। दस्तावेज़ात की ये बात चल रही है, क्योंकि दस्तावेज़ात वो चीज़ होती हैं जिसमें हम अपनी पसंद का गवाह लेते हैं। जो हादसात होते हैं, जो वाक़यात होते हैं, उसमें खुदा की पसंद के गवाह होते हैं, वह हमारी पसंद के गवाह नहीं होते। वहाँ हम ये नहीं कर सकते कि एक है कि दो हैं कि तीन है कि चार, ये भी नहीं कर सकते। बाज़ वाक़यात सिर्फ़ एक बच्चे के सामने हुए हो सकते हैं, बाज़ वाक़यात सिर्फ़ एक आदमी के सामने हो सकते हैं, बाज़ वाक़यात सिर्फ़ एक खातून के सामने हुए हो सकते हैं। तो इसलिए उसमें हम अपनी मर्ज़ी से गवाहों की तादाद मुकर्रर नहीं कर सकते। अपने गवाहों की तादाद सिर्फ़ उन चीज़ों में मुकर्रर की जाती है जो पब्लिक में हो गए हों, वहाँ आप हो सकता है 10 मिल जाए। लेकिन एक छुप के कमरे में एक आदमी ने, आपके घर में छुप के एक डाकू आया, आप घर में अकेले थे, डाका डाल के चला गया, तो आप कहाँ से चार गवाह लाए जाएंगे, दो गवाह लाए जाएंगे, और दो मर्द और एक औरत और दो औरतें और एक मर्द, ये तो नहीं हो सकता। तो ये तो दस्तावेज़ के ऊपर की बात हो रही। आम ज़िंदगी की गवाहियाँ जो हैं सिरे बहस नहीं हैं कि जना के केस में आपको दो, वहाँ तो खैर चार हो चाहिए होते हैं, या चोरी के केस में दो आदमी ही गवाह होंगे तब केस पकड़ा जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये दस्तावेज़ का मामला है कि जिसमें या करीना इसमें यह कि मिम्मन तर्जौना, उन में से जिनको तुम पसंद करते हो, जिनसे तुम राज़ी हो। तो चोरी में मेरे राज़ी वाले गवाह नहीं होते, वो तो अल्लाह ने रखे हैं जो भी वहाँ मौजूद होंगे। तो इसलिए ये दस्तावेज़ की शहादत है, ना कि वाक़ियात की। वाक़ियात की शहादत में हमारी उम्मत में बहुत शानदार तारीख रही है। इसमें बाज़ात ऐसे फ़ैसले भी हमारी तारीख में मौजूद हैं कि जो जानवरों की गवाही पर किए गए हैं। ये ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ इंसान चाहिए होते हैं, जानवरों की गवाही भी चलती है। मसलन गालबन काजी शराह का वाक़या है, रहमतुल्लाह हज़रत उमर के ज़माने के काजी हैं, तो उनके पास एक बैल का केस लाया गया। तो एक कह रहा है कि ये मेरा, दूसरा भी कह रहा है ये मेरा। तो काजी शराह ने पूछा कि तुमने बेचा इसको या तुमने ख़रीदा है? उसने कहा नहीं नहीं मेरा है। दोनों ने कहा कि मेरा है। उन्होंने कहा अच्छा किस गांव के हो? उन्होंने कहा फलां गांव के हैं। तो गांव ले गए, उन्होंने कहा बैल को छोड़ दो। बैल को छोड़ दिया तो बैल खुद ही अपने घर में चला गया। उन्होंने कहा जिसके घर में चला गया उसका। अब जाहिर है उन्होंने ये पूछ लिया, तसल्ली कर ली कि ख़रीदा तो नहीं है, बेचा तो नहीं है। अब ये फैसला नहीं हो सकता, अगर बेच लिया है ख़रीद लिया है तो फिर जाहिर है कि आज ही अगर बिका है तो वो अपने घर जाएगा, लेकिन अगर ख़रीदा नहीं गया तो फिर वो अपने घर में जाएगा जहाँ जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वाक़यात के ऊपर या इस तरह के मामलात में, उसमें हम इंसानों की गवाही तलाश नहीं कर सकते। बाज़ात हमारे पास कोई गवाही नहीं होता। तो फरमाया कि तुम दस्तावेज़ जब लिखने बैठो तो दो गवाह मर्दों में से चुन लो, और अगर दो मर्द ना हो तो फिर एक मर्द और दो औरतें, और ताकि एक जो है वो उनमें से अगर भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिला दे। ये तफसील इसलिए की है कि अल्लाह ताला ये कहना चाहते हैं कि गवाही एक ही औरत की है, दूसरी सपोर्ट करने के लिए। वला याबश शहदाउ इज़ा मा दू, जिस तरह ऊपर कहा था कि कातिब लिखने से इनकार ना करे, इस तरह से यहाँ भी कह दिया कि गवाह भी गवाही देने से जब उन्हें गवाही के लिए बुलाया जाए तो इनकार ना करे। यानी दो मौक़ों पर बुलाया जाता है, एक जब आप दस्तावेज़ लिख रहे थे उस मौके पर गवाह के तौर पर मांगा गया, और एक अब झगड़ा हो गया है तो उस वक्त गवाह के तौर पर कि आपके सामने ये दस्तावेज़ लिखी गई थी तो आप ज़रा गवाही दीजिए कि क्या मामला हुआ था। तो दोनों मौक़ों पर गवाहों को आने से इनकार नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया जी। तो ये कर्ज़ के ऊपर अल्लाह ताला की दो बड़ी अहम हदायतें हैं, लिखने के मुतल्लिक कुछ और गवाहों से मुतल्लिक कुछ। अब फिर लिखने की बात बीच में असल कानून बयान करने के बाद अब दोबारा ताकीद का जुमले आ रहे हैं। वला तसअमू अन यक्तुबूहु सगीरन और कबीरन इला अजले। तो इससे तुम्हें बेजारी नहीं इख्तियार करनी चाहिए कि तुम कर्ज़ छोटा हो या बड़ा हो उसको लिखने में तुम्हें बेजारी का इजहार नहीं करना चाहिए। जब भी कर्ज़ छोटा हो या बड़ा हो किसी मुकर्रर मुद्दत तक के लिए लिया जाए तो लाजमन लिखो। ये ना ख्याल करो क्या लिखें अब बैठ के, छोटी सी बात है। तो बाद में ये मसले पैदा हो जाते हैं, लिख लेना चाहिए। छोटा कर्ज़ हो या बड़ा कर्ज़ हो, कर्ज़ जब भी होगा, चूँकि कर्ज़ कर्ज़ है, लेने वाले ने लेना है, देने वाले ने देना है। तो आज आपने 10 रुपये कर्ज़ लिया हुआ है, कल वो हो सकता है 20 रुपये समझ के बैठा हो, आपके लिए झगड़ा बन जाएगा। ये तो ज़रूरी नहीं कि झगड़ा अगर 10 रुपये दोनों को याद रहें तो हो सकता है ना झगड़ा हो, लेकिन वो 10 के 20 बन सकते हैं, 20 के 100 बन सकते हैं, तो आपके लिए मसला बन सकता है। इसलिए कर्ज़ छोटा हो या बड़ा हो लिख लेना चाहिए, क्योंकि आगे उसकी वजह फरमाइए, ज़ालिकुम अक्सत इंदल्लाही व अकवमुल शहादा व अदना अल्ला तरताबु इल्ला अंतकूना तिजारतन हाजरतन तुदीरूनहा। 3 वजह बताई कि तुम्हारे लिए क्यों अच्छा है। इसलिए कि अल्लाह के नज़दीक भी इंसाफ के ज़्यादा करीब है। अक्सत इंदल्लाह, लिख लोगे तो ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा किस्त वाला है, ज़्यादा अदल वाला है। वह अकवामुल शहादा, और गवाही को भी कायम रखने के लिए सबसे मज़बूत चीज़ है। और फरमाया वह अदना अल्लाह तरताबु, और ज़्यादा इसके करीब है कि तुम इसके बाद शक में नहीं पड़ोगे। जो 3 बातें अल्लाह ताला ने कर दी, अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा इंसाफ वाला है क्योंकि जब जितना लिखा था उतना ही देना होगा, तो अल्लाह को ज़्यादा पसंदीदा है कि सही सही लिखा गया, सही सही पढ़ा गया, सही सही उसको अदा किया गया। और अकवामुल शहादा, यानी लोगों की गवाही जहनों से जहूल हो सकता है, तो इसलिए लिख लिया जाए ताकि किसी को भूल जाए तो दस्तावेज़ मौजूद हो। और शक से भी ज़्यादा बचाने वाली है, जैसे मैंने मिसाल दी पहले भी कि 10 रुपये दिए थे, अब वो सोच रहा है कि मैंने 20 रुपये दिए थे, तो अब शक की वजह से काम ख़राब हो सकता। एक तो ये ना कि आदमी इनकार ही कर दे, नहीं, अल्लाह ताला इनकार के लिए अकवाम निशादा को बोल दिया है, और एक है कि शक पड़ गया है कि दिए कितने थे, 10 रुपये दिए थे कि 20 रुपये दिए थे करस, तो लिख लोगे तो शक भी नहीं पड़ेगा और शहादत भी पुख्ता हो जाएगी, गवाही भी पुख्ता हो जाएगी कि जी इतने ही थे। तो अब ये अल्लाह ताला ने बताया कि लिखने की वजह क्या है। अल्लाह के नज़दीक दोनों का हक अदा होना चाहिए, इसलिए अल्लाह के नज़दीक यही बेहतर तरीका है कि लिख लिया जाए। और दूसरी वजह यह बताई कि ये गवाही के एतबार से भी ज़्यादा पुख्ता बात होती है, क्योंकि जहनों से बातें निकल जाती हैं। और तीसरी ये कि शक ना पड़े कि कितने दिए थे, किसको दिए थे, किस वक्त दिए थे। तो अब ये जो कर्ज़ का मामला है, ये उसको अल्लाह ताला ने पाबंद कर दिया है हमें लिखने के लिए, और लिखने के भी आदाब बता दिए और गवाहियों के भी आदाब बता दिए। आगे फरमाया कि अलबत्ता उस कर्ज़ में तुम्हें छूट है, ना लिखा ना करो जो तजारत हाजरा हो, तो दीरू ना हा, ऐसी तजारत जो रोज़ाना होती रहती है, सुबह दिए शाम को वापस ले लेने, शाम को दिए सुबह वापस ले लेने, इस तरह का जो मामला हो रहा होता है वो चल रहा होता है उधार में, कि दुकानदार कहते हैं यार ये इतना कपड़ा मुझे दे देना, मैं तुम्हें शाम को पैसे दे दूँगा, या रोटियाँ लेनी हैं तो इतनी रोटियाँ दे दो भाई, शाम को हिसाब कर लेंगे, तंदूर वाले बैठे होते हैं। तो ये रोज़ाना का जो मामला चल रहा होता है उसमें लिखना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पंजाब में कम अज़ कम, पता नहीं बाकी इलाकों में क्या है, तो तंदूर पर रोटियाँ लेने जाते हैं, टोकन से रखे होते हैं, तो वो भी ठीक है कि वो आप इतने टोकन आ गए हैं, इतनी रोटियों के पैसे आपको मिल जाएंगे। तो ये जो कुछ भी है वो अच्छा है, लेकिन ये भी अच्छा है कि सारा दिन भी आपका हिसाब चलता रहे। तो ये होना चाहिए कि कोई ना कोई ऐसा, ताकि किसी पर जुल्म ज़्यादती, किसी का नुकसान ना हो जाए। तो फरमाया कि इसमें तुम्हें इजाज़त है कि ना लिखो जो रोज़ाना का चलता हुआ काम होता है तुम्हारे दरमियान, तो दीरू ना बैनकुम फलैसा अलैकुम जुनाहुन अल्ला तक्तबूह, तो इसमें तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है कि तुम इसको ना लिखो। व अशहदु इज़ा तबायातुम, और जब तुम उधार की तजारत करो तो तब भी दो गवाह बना लिया करो। कर्ज़ लेना और उधार पे तजारत करना, ये दोनों मुख्तलिफ काम हैं, दोनों को लिखने का पाबंद कर दिया, गवाहों का पाबंद कर दिया। तो एक ये है कि आपने कर्ज लिया कि मुझे 10 रुपये दीजिएगा, मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है, कर्ज हो गया। एक ये है कि मैं आपसे चीनी उधार ले आया हूँ जी, मैं पहली को पैसे वापस करूँगा, इसकी कीमत अदा कर दूँगा, तो फरमाया इसको भी लिख लो, ये भी उधार है, कर्ज ही है, लेकिन ये सौदा खरीदा गया, ये तजारत हुई है उधार के ऊपर। तो फरमाया कि जब उधार के ऊपर तजारत करो तो इसको भी लिख लिया करो। वला युजार कातिबुन वला शहीदुन, और अब जो कातिब लिखने का इनकार क्यों कर सकते हैं, कि वो बेचारे धक्के खाते फिरते हैं, अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, ये वो। तो फरमाया कि ना तो लिखने वाले को नुकसान पहुंचाया जाए, ना गवाहों को। अब ये दोनों पार्टीज़ जो कर्ज़ लेने वाली, कर्ज़ देने वाली, उधार तजारत करने वाली हैं, उनको एक और नसीहत की जा रही है कि देखो जो तुम्हारे लिखने का काम करें उनको नुकसान ना पहुँचाना, और जो गवाही देने आ जाएँ उनको नुकसान ना पहुँचाना। ऐसा ना हो कि बेचारे धक्के खाते फिरें, रगड़े जाएं, ये हो जाए वो हो जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। वाइन तफलू फाइनहु फसूक उन बेकुम, तो अगर तुम ऐसा करोगे तो याद रखो ये वो फसूक है जो तुम्हारे ऊपर लाहिक हो जाएगा, यानी तुम्हारे साथ चिपक के रह जाएगा, तुम्हारे लिए गुनाहों का बायस बनेगा, क्यामत वाले दिन ही जाकर फिर जुदा होना है तो होगा। और जो क्यामत तक फसूक लेकर चला गया तो वह मारा जाएगा, ना उसका वहाँ हिसाब किताब होगा और उसको भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर है कि तुम ये मामला दुनिया ही में निपटा दो और आखिरत तक ना लेकर जाओ, और ना किसी को नुकसान पहुँचाओ, ना गवाहों को, ना कातिबों को, ना कर्ज़ देने वाला कर्ज़दार को, ना कर्ज़दार जो है वो कर्ज़ देने वाले को नुकसान पहुँचाए। ये सब कुछ अल्लाह ताला ने वहाँ वाज़े कर दिया। अब यहाँ दो तीन बातें अहम हैं इस कलाम को, एक पहलू से मुकम्मल हो गया है, आगे اللہ تعالیٰ نے اپنی نصیحت کی آیتیں بولی ہیں وہ میں واضح کرتا ہوں. قرض مسلم معاشرے کی ایک اہم ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کو اس طرح سے ترتیب دیا ہے کہ انسانوں کے اندر روزی کو تقسیم کیا ہے، کسی کو زیادہ روزی دی ہے، کسی کو کم دی ہے. تو جن کو زیادہ دی ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے مالوں میں حقدار اور محروم کے لیے اللہ نے ایک حصہ رکھا ہے، اس حصے کو دو حصوں میں تقسیم کر لیجئے، ایک صدقہ و خیرات کی شکل میں دینا، چندے کی شکل میں دینا، اور دوسرا قرض کی شکل میں دینا. دونوں ہی اللہ کے بندوں کے ساتھ تعاون ہے. آپ ویسے دے دیں اللہ کے نام پر، یہ بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ وہ نہیں دینا چاہتے تو قرض دے دیں، یہ بھی بہت اچھی نیکی کی بات ہے. لیکن اس قرض کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ دونوں فریقوں کے لیے یا گواہوں اور لکھنے والوں کے لیے یہ اذیت کا یا نقصان کا باعث بنے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک قانون دیا ہے. قانون میں لکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ قرض لکھا جائے گا جب بھی مقررہ مدت کے لیے قرض لیا جائے گا، ہفتے کے لیے، پانچ دن کے لیے، دو دن کے لیے، وہ قرض لکھا جائے گا. اس کے اوپر لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھے، لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، اور لکھانے کا کام وہ کرے جس نے قرض لیا ہے، اور وہ ایک چیز بھی اس میں سے کم نہ کرے. اور اگر لکھانے والا لکھانے کے قابل نہیں ہے کسی وجہ سے، تو پھر چاہیے کہ اس کا ولی، اس کا جو بھی ذمہ دار ہے، وہ لکھوا دے. اور اس لکھوانے کے اوپر دو گواہ بھی مقرر ہونے چاہیے. اصل میں قرض کے اوپر گواہ ہوتے ہیں، پھر وہ لکھنے پر بھی ان کا نام آ جاتا ہے. اور گواہیوں میں دو صورتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ اگر دو مرد مل جائیں تو ٹھیک، دو مرد نہ ملیں تو ایک مرد اور ایک عورت، تاکہ دوسری عورت یاد دلانے کے کام آئے. اور فرمایا کہ قرض چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لازماً لکھا جائے گا. اس میں تمہیں اکتاہٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے، آپ کیا لکھتے رہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا لکھیں گے. فرمایا کہ قرض چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لکھ لینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہی اللہ کے نزدیک انصاف کے زیادہ قریب ہے، اور اس لیے کہ گواہی بھی اس سے بہتر قائم ہوتی ہے اور شک و شبہ بھی پیدا نہیں ہوتا. یہ اس کے فائدے بتا دیے لکھنے کے. البتہ ان قرضوں پر لکھنے سے چھوٹ دی ہے جو روزانہ کا لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، گھنٹے، دو گھنٹے میں، چار گھنٹے میں، دکان کھلنے سے لے کر دکان بند ہونے تک. یہ ٹھیک ہے، ہمسائے نے آٹا مانگ لیا ہے، کوئی چیز اس طرح کی مانگ لی ہے ادھار، اس طرح کے روزانہ چل سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ جیسے ہی ٹائم طے پائے گا کہ مہینے بعد لینا ہے تو اس کو لکھ لینا چاہیے. اور اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ نہ لکھا جائے، تاکہ وہ، کیونکہ یہ روزانہ کا معاملہ ہے، ذہنوں میں تازہ ہی ہوتا ہے، نہ شک پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے عام طور سے، نہ کچھ اس طرح کی چیز. اور فرمایا کہ دونوں پارٹیز ہیں، جو قرض لینے والی، قرض دینے والی، ادھار کے اوپر بے کرنے والی، یہ دونوں پارٹیز نہ کاتب کو نقصان پہنچائیں گے جس نے لکھا تھا یا لکھنے والے ہیں، نہ گواہوں کو، کیونکہ اگر ان کو نقصان پہنچایا جانے لگ گیا تو نہ لکھنے والے لکھا کریں گے، نہ گواہیاں دینے والے گواہی کے لیے آیا کریں گے. اور فرمایا کہ اگر تم نے یہ کام کیے جن سے روکا جا رہا ہے، تو پھر تم اپنے ساتھ فسق کو لے کر، فسق تمہارے ساتھ چپک کر رہ جائے گا، اور وہ قیامت والے دن سزا کی شکل میں سامنے آئے گا. فسوق جو ہے وہ فسوقن بیکم جو ہے یہ دو معنی رکھتا ہے اپنے اندر. ایک چپک جانے کے ہیں کہ اب یہ جدا نہیں ہوگا، توبہ کے بغیر، معاملات صاف کرنے کے بغیر صاف نہیں ہوگا. اور دوسرے اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ تمہیں چھا لے گا. یہ قرآن مجید کا ایک گناہوں کا اصول ہے جو سورہ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. گناہ جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک وہ گناہ ہیں جو بس گناہ ہیں، چھوٹے موٹے ہو گئے. ایک گناہ وہ ہیں جو پوری زندگی کا احاطہ کر لیتے ہیں. قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، احاطت بہی خطیت ہو، کہ جس نے کوئی ایسی برائی کی جس کی خطیت نے اس کی پوری زندگی کو گھیر لیا. اس کے دو ممکنہ معنی ہیں اس جملے کے. ایک ممکنہ معنی یہ ہے جو عام طور سے لوگوں نے لیے ہیں، کہ آدمی ہر روز وہ گناہ کرنے لگ جائے، ساری زندگی اس سے بچ نہ سکے. چھوٹا گناہ ہے لیکن ساری زندگی مسلسل کرتا رہا ہے، تو یہ وہ گناہ ہے جو احاطت بہی خطیہ تو ہو گیا، کہ اس کی پوری زندگی کو چھا گیا. दूसरे मानी इसके ये हैं कि गुनाह इतना बड़ा था कि सारी ज़िंदगी की नेकियां खा गया। गुनाह इतना, कत्ल कर दिया, जना कर दिया, विरासत का हक मार लिया, शिर्क कर दिया, किसी रसूल का इनकार कर दिया, अल्लाह की किताब का इनकार कर दिया, तो ये वो गुनाह है जो पूरी ज़िंदगी की नेकियों को खा जाएंगे। तो ये दो पहलुओं से गुनाह घेर। तो अब फ़ैन्नहु फ़ुसूकुन बेकुम में भी दो मानी हो सकते हैं। एक ये कि जो भी गुनाह तुम करोगे वो तुम्हारे साथ चिपका रहेगा, तुम्हारे आमालनामे का हिस्सा बन जाएगा और क़यामत वाले दिन तुम्हें भुगतना पड़ेगा। एक मतलब ये है। और दूसरा मतलब यह है कि ये माली मामलात में, हकूक़ुल इबाद के अंदर जब तुम कोई गुनाह करते हो तो वो तो तुम्हारी पूरी दौलत खा सकता है, वो तुम्हारी पूरी नेकियों को खा सकता है। ये मैं पहले असूल अलग से कई दफ़ा बयान कर चुका हूँ कि नेकियां और बदियों का मामला आपस में खाने और बच जाने का मामला है। जैसे हमारी हिसाब किताब, जो अकाउंट्स की किताब होती है, उसमें इतनी इनकम हुई, इतना खर्चा हो गया, तो यही मामला गुनाह और नेकी के साथ होता रहता है। जब हम नेकी करते हैं तो हमारे खाते में इनकम ज़ाहिर होती है, और जब हम गुनाह करते हैं तो समझिए खर्च हो गई। उधर हमने नेकी की, पॉइंट्स बढ़ गए, उधर हमने गुनाह किया, पॉइंट्स कम हो जाएंगे। तो ये मामला होता रहता है। इसको कुरान कहता है युज़हिबनल हसनात उस्सैयात, कि हसनात जो हैं वो सैयात को खा जाती हैं, और ऐसा ही सैयात हसनात को खा जाती हैं, यानी नेकियाँ बदियों को खा जाती हैं, बदियाँ नेकियों को खा जाती हैं। तो उसका मतलब वही मैं उसको लेजर के हिसाब से समझाना चाहता हूँ कि इधर इनकम हुई, उधर खर्च हो गया। कुरान ने इसको सूरह कारिया में एक और पहलू से भी बयान किया है, वो ये कि कल जो मीज़ान लगनी है उसमें या वज़न होगा या वो हल्का होगा। तो अब मिसाल के तौर पर ये मीज़ान है, इसमें हमने नेकियां डाली तो वज़न की वजह से नीचे चली जाएगी, और नेकियां कम करेंगे तो ये ऊपर आती चली जाएगी। तो एक लेवल वो होगा कि जहाँ ज़ीरो है, फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये लेवल ज़ीरो का है, जहाँ पे इस वक्त मेरा हाथ है, नेकी डाली तो नीचे हो गई, पलड़ा भारी हो गया, नेकी ख़त्म हो गई तो पलड़ा हल्का हो गया, और अगर इसमें गुनाह डालते चले जाएँ तो ये ऊंचा होता चला जाएगा हल्का होने की वजह से, जैसे हल्की हवा होकर ऊपर जाती है। तो ये गालबन क़यामत वाले दिन हमारे नाप तोल इस तरह से होंगे कि हमारी नेकियां और हमारी बदियां एक पलड़े में डाल दी गई, वो एक दूसरे को खाकर बाकी क्या बचा, नेकी बच गई है तो पलड़ा भारी है, बदी बच गई है तो पलड़ा हल्का है। तो ये मामला क़यामत वाले दिन होना है। तो इसलिए फसूकुन बिकुम में ये मानी मौजूद हैं कि वो ऐसा चिपका है कि वो पलड़ा हल्का कर गया है, या ऐसा चिपका है कि क़यामत से पहले कोई उसको टाल नहीं सकता। तो ये इसलिए माली मामलात हों, इंसानों के साथ जो मामलात हों, दूसरे इंसानों की जान, उनका माल, उनकी आबरू, उनके अकल, उनकी औलाद, इसको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हजरत अलवदा के मौके पर सहाबा से पूछा कि आज कौन सा दिन है, तो सहाबा ने अर्ज़ की कि हज का दिन है। आपने पूछा ये कौन सा शहर है, सहाबा ने अर्ज़ की कि ये मक्का का शहर है। तो आपने पूछा कि ये कौन सा महीना है, उन्होंने कहा कि जुलहज का महीना है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस शहर, जो इस दिन और जो इस महीने की हालत है, वही तमाम लोगों के जान, माल और आबरू की है। अब इस जो आपने तमसील बनाई है, इस तमसील को ज़रा खोलिए। अगर मैं आपको गाली दूं तो उतना ही गुनाह है जितना खाना काबा को आज के दिन को गाली देने का होगा, नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक। ठीक है, अगर मैं आपका माल चुराता हूँ तो हज को चुराने के मानी में हो जाएगा, उतना ही बड़ा गुनाह हो जाएगा कि मैं खाना काबा की कोई ईंटें चुरा कर ले आया हूँ, उसको मैंने मुनहदिम कर दिया है। तो ये इतना बड़ा गुनाह है किसी की जान, माल और आबरू को। ज़ाहिर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये बात कही है उसके साथ कुरान भी खड़ा है, वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। ज़ाहिर है कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हम बहुत मौक़ों पर लालच, हिर्स, ज़रूरत हमारे सामने आ जाती है तो हम गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, तो अल्लाह का तकवा ही हमें बचाता है। युअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें सिखा रहे हैं, तो इसलिए इस बात को समझ लो जो अल्लाह ताला तालीम दे रहे हैं। बाद सूफिया ने इन दोनों जुमलों के बीच में से वाव निकाल कर किरात की है, वत्तकुल्लाहु युअल्लिमुकुमुल, अल्लाह का तकवा इख्तियार करोगे तो वह तुम्हें सिखाएगा। ये कुरान का मानी नहीं है। कुरान मजीद के मानी ये हैं कि अल्लाह से डरते रहो और उन चीज़ों को सीखो जो अल्लाह ताला तुम्हें सिखा रहे हैं। वल्लाहु बिकुल्लि शयइन अलीम, और अल्लाह ताला के बारे में जान रखो कि वो हर चीज़ को जानते हैं। तुम्हारे करतूत भी उसके सामने हैं और तुम्हारी नेकियाँ भी उसके सामने हैं। कर्ज दोगे तो वो भी तुम्हारे अल्लाह के सामने है, कर्ज़ देकर माफ़ कर दोगे तो वो भी अल्लाह के सामने है, सूद हासिल करोगे तो वो भी अल्लाह के सामने है। तो वक्त हो गया जी, वह आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह।